प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही वो सत्य वचन है जो हमें आत्मिक सामर्थ और शांति देता है और अंधकार में भटकने से हमें बचाता है। तो आइए हम कुछ देर के लिए आज के वचन को ध्यानपूर्वक सुनें और अपने जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी श्रोता भाई बहनों व मित्रों को परम प्रधान परमेश्वर के नाम में हमारा हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप प्रभु की कृपा से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम गिनती की पुस्तक का अध्ययन करते रहे हैं और अब हम गिनती की पुस्तक के अंतिम अध्यायों पर पहुंच गए हैं। आज हम इसके 34, 35 व 36 में अध्यायों का अध्ययन करेंगे। अनेक श्रोता भाई बहन व मित्रों की इच्छा है कि हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कराएं, किंतु हम समय की सीमा में बंधे हुए हैं और इसलिए हम कम समय में आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। प्रभु के वचन के प्रति आपके ऐसे प्रेम और रुचि के लिए हम आपको बधाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आपको आशीष दें और आपकी इस पिपासा और भूख को तृप्त करें। आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व हम प्रभु के चरणों में चलें और उनसे सामर्थ मांगें और उनसे प्रार्थना करें। हे जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से आपने पिछले दिनों में इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमारी सहायता करने की कृपा की है, आज भी हमारी सहायता करने की कृपा करें। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं और अपने वचन को हमारे लिए वास्तविक बना दें। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम आपके वचन पर विश्वास कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन या मित्र किसी गंभीर रोग से पीड़ित है, जीवन में निराश है, हताश है, किसी बुरी आदत में फंसा हुआ है, उसके जीवन में अशांति है, प्रभु आप उसकी सहायता करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, आइए अपने कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। आज हम सर्वप्रथम गिनती के 34वें अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। गिनती की पुस्तक के 34वें अध्याय का शीर्षक है प्रतिज्ञा के देश की सीमाएं। ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि यह इस वाक्यांश की सुस्पष्ट परिभाषा देता है कि उस क्षेत्र का विस्तार अर्थात सीमा जो परमेश्वर ने इसराइल को दिया, साथ ही उस सत्य को भी रेखांकित करता है कि परमेश्वर ने यह देश इसराइल को अनंत अधिकार के लिए दिया। मित्रों, ये ध्यान देने का विषय नहीं है कि इस पर कौन अपना दावा कर रहा है, परंतु ध्यान देने का विषय यह है कि वो भूमि इसराइल की है। आइए हमारे साथ अपनी पवित्र बाइबल से देखें गिनती की पुस्तक 34वां अध्याय पहला और दूसरा पद। इन पदों में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों को यह आज्ञा दे, जब तुम कनान देश में प्रवेश करोगे तो मैं उस देश अर्थात सीमा सहित कनान देश को तुम्हारा निज भाग होने के लिए दे दूंगा। मित्रों, कनान की सीमाएं यहां प्रभु जी निर्धारित कर रहे हैं। कनान की दक्षिणी सीमा जो प्रभु ने उनको प्रदान की वो इस प्रकार से है, तीसरे पद में बताया गया है कि तुम्हारा दक्षिणी सीमा प्रांत एदोम की ओर तिस्सीन जंगल तक और दक्षिणी सीमा पूर्व में मृतक सागर के अंत तक होगी। और उनकी पश्चिमी सीमा के विषय में प्रभु जी छठे पद में बताते हैं, फिर तुम्हारी पश्चिमी सीमा पर महासमुद्र हो, अर्थात समुद्र ही तुम्हारी पश्चिमी सीमा हो। और उत्तरी सीमा के विषय में 7-9 पदों में बताया गया है, और तुम्हारी उत्तरी सीमा ये हो, तुम महासमुद्र से होर पर्वत तक अपनी सीमा बांधना, फिर होर पर्वत से लेबो हमात तक सीमा बांधना, और सीमा का अंत सदात पर हो। फिर वह सीमा जिप्रोन से लेकर हसरे नान तक पहुंचे, ये तुम्हारी उत्तरी सीमा हो। और तब उनकी पूर्वी सीमा को प्रभु जी 10-12 पदों में सुस्पष्ट करते हैं, या इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारी पूर्वी सीमा हसरे नान से शापान तक बांधी जाए, और वह सीमा शापान से रिबला तक जो एन के पूर्व में है नीचे की ओर किन्नेरेत झील के पूर्व तक जाए, और वह सीमा यर्दन तक नीचे उतरकर मृत सागर तक पहुंचे। तुम्हारे देश के चारों ओर की सीमाएं यही हों। मित्रों, इसके पश्चात प्रभु जी ने यह स्पष्ट किया कि इसराइली गोत्रों में भूमि के वितरण में कौन कौन व्यक्ति उत्तरदायी अर्थात जिम्मेवार होंगे। आइए 16-18 पदों को देखें, यहां इस प्रकार से बताया गया है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये उन पुरुषों के नाम हैं जो उस देश को तुम्हारा निज भाग होने के लिए बांटेंगे, एलियाजर के साथ नून का पुत्र यहोशू, और तुम देश को बांटने के लिए एक गोत्र का एक एक प्रधान ठहराना, और इन पुरुषों के नाम ये हैं। और इस प्रकार से 20वें पद से लेकर 29वें पद तक उन पुरुषों के नाम हमको बताए गए हैं। 29वें पद में लिखा है, यही वे लोग हैं जिन्हें यहोवा ने कनान देश को इसराइलियों के लिए बांटने की आज्ञा दी थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि परमेश्वर ने अत्यंत सुस्पष्ट तथा सुव्यवस्थित रूप में कनान देश में इसराइली गोत्रों में भूमि के वितरण की आज्ञा दी। और तब हम 35वें अध्याय में आते हैं। 35वें अध्याय का मुख्य विषय है लेवियों को शरण नगर दिया जाना। जैसे कि हम सीख चुके हैं कि लेवियों को इसराइल के पहलौठों के स्थान पर ले लिया गया था। लेवी परमेश्वर के थे, उन्हें इसराइल के साथ कनान की भूमि नहीं दी गई, परंतु उन्हें बसने के लिए नगर दिए गए। सो आइए उन नगरों को देखें जो परमेश्वर ने उनको बसने के लिए दिए। 35वें अध्याय के 1-5 पदों में इन नगरों के विषय में बताया गया है, तब यहोवा ने मोआब की तराई में यरीहो के पास यर्दन के किनारे मूसा से कहा, इसराइलियों को आज्ञा दे कि वे अपने उत्तराधिकार की भूमि में से लेवियों के रहने के लिए नगर दें, तथा उन नगरों के चारों ओर के चरागाह भी लेवियों को दें। नगर तो उनके रहने के लिए तथा चरागाह उनके गाय बैलों और भेड़ बकरियों तथा उनके अन्य सभी पशुओं के लिए हों। और 4वें पद में हम पढ़ते हैं कि उपनगर भी चरागाह थे, वे भी लेवियों को दे दिए गए। जैसा कि यहां लिखा है, नगरों के चरागाह जो तुम लेवियों को दोगे वो प्रत्येक नगर की शहर पनाह के चारों ओर 1,000 हाथ तक के हों। और उसके पश्चात हम देखते हैं कि जो 48 नगर लेवियों को दिए गए उनमें से 6 नगर शरण नगर थे। 9-13 पदों में इनके विषय में बताया गया है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से ये कहे, जब तुम यर्दन पार होकर कनान देश में पहुंचो तब तुम अपने लिए ऐसे नगर ठहरा लेना जो तुम्हारे शरण जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो। तब वह हत्यारा जिसने अनजाने में किसी की हत्या कर दी हो वहां भाग जाए, और ये नगर बदला लेने वालों से तुम्हारे लिए शरण स्थान ठहरे, जिससे कि हत्यारा जब तक सभा के सामने न्याय के लिए खड़ा ना हो तब तक वह मार डाला ना जाए। और उनको दिए जाने वाले नगर तुम्हारे छह शरण नगर हों। मित्रों, लेवियों को तीन शरण नगर यर्दन के पूर्व में और तीन नगर पश्चिम में ठहराने थे। यदि कोई व्यक्ति भूल से किसी की हत्या कर दे तो वह वहां भागकर इन शरण नगरों में छिप सकता था। ये नगर उसे उस उग्र भीड़ से पनाह देंगे जो उसे मार डालना चाहती है, और इस प्रकार उसे उचित न्याय मिल सकेगा। ये अच्छी व्यवस्था थी। जैसा कि यहां पर बताया गया है कि यर्दन के उस पार तीन नगर और कनान देश में तीन नगर देना ये शरण नगर ठहरे। ये छह नगर इसराइलियों और उनके बीच रहने वाले विदेशियों तथा प्रवासियों के लिए शरण स्थान हो कि यदि कोई अनजाने में किसी को मार डाले तो वहां भाग जाए। 24 और 25 पदों में हम पढ़ते हैं, तब मारने वाले और खून का बदला लेने वाले के बीच में सभा इन्हीं नियमों के अनुसार न्याय करे। सभा उस मारने वाले को बदला लेने वाले के हाथ से छुड़ा ले, और सभा ही उसे उस शरण स्थान में जहां वह भाग गया था लौटा दे। और जब तक कि पवित्र तेल से अभिषिक्त महायाजक की मृत्यु ना हो जाए तब तक वहीं रहे। मित्रवर, ध्यान दें, जानबूझकर हत्या करने वाले के लिए शरण नगर की व्यवस्था नहीं थी। 30वें पद में लिखा है, यदि कोई किसी मनुष्य को मार डाले तो वह हत्यारा साक्षियों के आधार पर मार डाला जाए, परंतु एक ही व्यक्ति की साक्षी के आधार पर कोई ना मार डाला जाए। तब 33 और 34 पदों में लिखा है, अतः तुम उस देश को जिसमें तुम रहोगे अशुद्ध ना करना, क्योंकि खून देश को अशुद्ध कर देता है। ध्यान दें मित्र, खून देश को अशुद्ध कर देता है, और उस देश का प्रायश्चित जिसमें खून किया गया हो केवल उस व्यक्ति के खून से किया जा सकता है जिसने खून किया है। और 34वें पद में लिखा है, जिस देश में तुम रहोगे और जिसके मध्य मैं निवास करूंगा उसे अशुद्ध ना करना, क्योंकि मैं यहोवा तो इसराइलियों के मध्य निवास करता हूं। मित्रों, खून देश को अशुद्ध कर देता है। इसके प्रायश्चित के लिए हत्यारे को मृत्यु दंड दिया जाना अनिवार्य है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर इसराइल के मध्य निवास करता था, और इसलिए उन्हें देश को अशुद्ध होने से बचाए रखना था। आज मेरे और आपके लिए शारीरिक तथा आत्मिक शुद्धता कितनी आवश्यक है, और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की कैसी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि मसीह का लहू ही है जो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। और तब हम 36वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 36वें अध्याय का शीर्षक है, भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में नियम। और इस अध्याय में हम देखेंगे कि यूसुफ के पुत्रों के परिवारों के मुखिया प्रभु के दास मूसा के सामने एक समस्या लेकर आते हैं, और उनकी समस्या यह है कि यदि हमारे भाई सलोफात की पुत्रियां किसी दूसरे गोत्र में विवाह करेंगी तब उनकी भूमि दूसरे गोत्र में पहुंच जाएगी, और इस प्रकार हमारा निज भाग घट जाएगा। जैसा कि इन पदों में बताया गया है, 1-5 पदों में लिखा है, यूसुफ वंशियों के घरानों में से माकीर का पुत्र और मनश्शे का पोता गिलाद के पूर्वजों के घरानों के प्रधान तो मूसा और इसराइलियों के घरानों के प्रधानों के पास आकर कहने लगे, यहोवा ने हमारे स्वामी को आज्ञा दी थी कि चिट्ठी डालकर इसराइलियों को देश बांट देना। फिर यहोवा ने हमारे स्वामी को आज्ञा दी थी कि हमारे भाई सलोफात का भाग उसकी पुत्रियों को देना, परंतु यदि वे इसराइलियों के किसी और गोत्र के पुरुष से विवाह करें तो उनका भाग हमारे पूर्वजों के भाग से हटकर उस गोत्र के भाग में मिल जाएगा जिसकी वे हो जाएंगी। इस प्रकार हमारा निज भाग तो घट जाएगा, और जब इसराइलियों की जुबली आएगी तो उन पुत्रियों का भाग उस गोत्र के भाग में मिल जाएगा जिसकी वे होंगी। इस प्रकार उनका भाग हमारे पूर्वजों के गोत्र के भाग से छूट जाएगा। तब यहोवा के आज्ञानुसार मूसा ने इसराइलियों से कहा, यूसुफ वंशियों के गोत्र का कहना ठीक है। और तब अग्रिम पदों में हम पढ़ते हैं, सलोफात की पुत्रियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि वे अपनी इच्छा के अनुसार ब्याही जाएं, परंतु अपने पिता के गोत्र के घराने में ही। और इस प्रकार इसराइलियों की किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में जाने ना पाए, क्योंकि इसराइली अपने अपने पूर्वजों के गोत्र के भाग पर अधिकार रखेंगे। और इसराइलियों के गोत्र की जो भी पुत्री मीरास पाए, वह अपने ही पिता के गोत्र के घराने में ब्याही जाए, जिससे कि इसराइली अपने अपने पूर्वजों के भाग के अधिकारी रहें, और इस प्रकार किसी गोत्र की मीरास दूसरे गोत्र के भाग में जाने ना पाए, क्योंकि इसराइलियों के गोत्र अपने अपने भाग के अधिकारी बने रहेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु के सेवक मूसा इस विषय से संबंधित परमेश्वर का वचन उन्हें बताते हैं कि प्रत्येक गोत्र की निज भूमि को उस गोत्र के पास ही रहना था। कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से उस भूमि से वंचित नहीं रह सकता था। जुबली वर्ष में वो समस्त भूमि जो रहन रखी जाती उसके मूल परिवार को वापस की जाती थी। ये एक अद्भुत प्रबंध था जो परमेश्वर ने अपने लोगों के हित में किया, और इस ढंग से परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा की। और तब 10 से 12 पदों में लिखा है, यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी ठीक उसी के अनुसार सलोफात की पुत्रियों ने किया। सलोफात की पुत्रियों अर्थात महला, तिरसा, होगला, मिल्का और नोआ ने अपने चचेरे भाइयों से विवाह किया। उन्होंने यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के घरानों में विवाह किया, और उनका भाग उनके पिता के घराने के गोत्र के अधिकार में बना रहा। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने आज्ञा का पालन किया और उसी के अनुसार किया जैसा उनसे कहा गया, और भूमि पर उनके पिता के घराने ही का अधिकार बना रहा। दूसरे शब्दों में उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन की इच्छा के अनुसार विवाह नहीं किया, परंतु जैसा परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी उन्होंने अपने घराने में विवाह किया, अर्थात यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के घरानों में उन्होंने विवाह संबंध स्थापित किए, और इस प्रकार से भूमि पर उनके पिता के घराने का अधिकार सदा बना रहा। और 13वें पद में लिखा है, ये वे आज्ञाएं और नियम हैं जो यहोवा ने यर्दन के तट पर यरीहो के पास मोआब की तराई में मूसा के द्वारा इसराइलियों को दिए थे। मित्रों, इसी वचन के साथ गिनती की पुस्तक यहां पर समाप्त होती है, और इसके साथ ही प्रभु के दास मूसा की सार्वजनिक सेवा का भी अंत होता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक मूसा की व्यक्तिगत सेवा को जारी रखेगी। गिनती की पुस्तक में हमने परमेश्वर की संतान के निर्जन प्रदेश के अनुभवों की झलक को देखा। इस झलक में उनकी असफलता, उनका विद्रोह, कुड़कुड़ाहट तथा आंसू हमने देखे हैं, परंतु ये इस जंगल रूपी संसार में हमारी जीवन यात्रा के लिए महान सबक सिखाता है। यह हमको बताता है कि हमको किस प्रकार से परमेश्वर का आज्ञाकारी होना है और किस प्रकार से हमें परमेश्वर के आगे समर्पित होना है, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। यदि हम पूर्ण हृदय से परमेश्वर के समक्ष आज्ञाकारी नहीं होते, परमेश्वर की योजना को ग्रहण नहीं करते, अपने आप को उसके आगे समर्पित नहीं करते, तो मित्रों हमें हानि होती है। जिस प्रकार से इसराइल प्रजा का एक बड़ा भाग जंगल में नाश हो गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञाओं के आगे अपने आप को समर्पित नहीं किया। परंतु जिन लोगों ने परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के आगे अपने आप को समर्पित किया, उन्होंने उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश पाया जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने सेवक इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दी थी। आज भी मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने एक आशीष का स्थान ठहराया है, अब वो है अनंत काल का जीवन, परमेश्वर के साथ अनंत काल की संगति। यदि हम पूर्ण रूप से परमेश्वर की आज्ञा के आगे अपने आप को समर्पित करते हैं तो हम उस स्थान से वंचित नहीं रह पाएंगे, हम निश्चित रूप से उस स्थान में प्रवेश पाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा है कि यह अर्थात प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ पर विश्वास करो ताकि तुम अनंत जीवन प्राप्त करो, मैं इसलिए आया हूं कि तुम अनंत जीवन प्राप्त करो। यदि आज आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो आप न केवल इस जंगल रूपी यात्रा में सफल होते हैं वरन परमेश्वर के साथ अनंत काल की संगति का आश्वासन प्राप्त करते हैं। अब इन्हीं वचनों के साथ हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मुझे आशा है आपको इस अध्ययन कार्यक्रम से निश्चित रूप से आशीष प्राप्त हुई है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है या आपको किसी बात पर संदेह होता है तो आप हमें निश्चित रूप से लिखकर भेजें, हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। आपके पत्रों के द्वारा हमें आशीष प्राप्त होती है, हमें ये ज्ञात होता है कि आप किस प्रकार से परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं और किस प्रकार से आपने आत्मिक रूप से उन्नति प्राप्त की है। हमारी प्रार्थना है कि आप दिन प्रतिदिन न केवल शारीरिक रूप से उन्नति प्राप्त करें वरन आप आत्मिक जीवन में भी निरंतर उन्नति प्राप्त करते जाएं। अब इसी वचन के साथ हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और अपने वचन की रक्षा करे, आमीन।
छोड़ा है जब से दुनिया को मैंने और मसीह को थाम लिया, छोड़ा है जब से दुनिया को मैंने और मसीह को थाम लिया। दुनिया मौत है जिंदगी मसीह है, दुनिया मौत है जिंदगी मसीह है, यही सच है पहचान लिया। छोड़ा है जब से दुनिया को मैं और मसीह को थाम लिया। चलते चलते दुनिया की राहों में जाना नहीं अब अंत कहाँ। जब से यीशु की राह चला मैं मंजिल को पहचान लिया। छोड़ा है जब से दुनिया को मैं जरा तुम देखो यारो, खेल गुनाहों के इधर उधर। रुक के जरा तुम देखो यारो, खेल गुनाहों के इधर उधर। बच पाएगा इन्हीं से वो जिसने यीशु का नाम लिया। छोड़ा है जब से दुनिया को मैंने और मसीह को है पहचान लिया। छोड़ा है जब से दुनिया को मैंने और मसीह को थाम लिया।
का कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद। श्रोता, हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आत्मिक रूप से प्रोत्साहन मिला होगा। यदि आप इस विषय में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक पोस्टकार्ड के द्वारा तुरंत इस पते पर हमसे संपर्क करें। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।